नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर चर्चा करने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य का एक महत्वपूर्ण उद्बोधन है, तपस्वी जीवन के मूलभूत सिद्धांत। तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पूज्य गुरुदेव के अनुसार ये तपस्वी जीवन आखिर है क्या और इसके मूल तत्व क्या है। हमारा मकसद सिर्फ इसकी व्याख्या करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि तपस्या के जो सिद्धांत हैं वो आज के समय में एक आम भारतीय नागरिक के जीवन में कैसे प्रासंगिक हो सकते हैं, कैसे उतर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये विचार यात्रा।
बिल्कुल। और पूज्य गुरुदेव की सबसे खास बात यही है कि वो तपस्या को कोई मतलब रूखा सूखा कर्मकांड या सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं मानते थे।
अच्छा।
उनके लिए तो ये व्यक्तित्व को गढ़ने की, उसे निखारने की, मजबूत बनाने की एक जीती जागते प्रक्रिया है।
हाँ, ये बात तो है।
उन्होंने उदाहरण भी दिया है, जैसे कच्ची धातु होती है ना, उसे भट्टी में तपाते हैं तब जाके वो फौलाद बनती है। या कच्ची मिट्टी को आग में पकाते हैं तब वो एक टिकाऊ ईंट बनती है।
बिल्कुल वैसे ही, तब की जो आग है वो व्यक्ति को कठिनाइयों में, मुश्किलों में अटल रहना सिखाती है, अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की ताकत देती है।
हाँ, ये तुलना काफी काफी स्पष्ट कर देती है बात को। और पूज्य गुरुदेव ने कई पौराणिक उदाहरण भी तो दिए हैं ना।
जी जी।
जैसे भगीरथ का गंगा को पृथ्वी पर लाना, धदीची ऋषि का अपनी हड्डियों का दान देना, श्रृंगी ऋषि का वो यज्ञ जिससे संतान प्राप्ति हुई,
पार्वती जी का तप शिव जी को पाने के लिए।
हाँ, पार्वती जी का कठोर तप, बालक ध्रुव की भक्ति, परशुराम का पराक्रम, अगस्त्य ऋषि का समुद्र पी जाना, ये सब कथाएं, इनमें तप का क्या विशेष महत्व बताया गया है?
देखिए, यहाँ समझने वाली बात ये है, जो बहुत आकर्षक भी है, कि ये जितने भी महान काम हुए या जो दिव्य वरदान मिले, वो सिर्फ इसलिए नहीं थे कि वो पात्र किसी ऊंचे कुल मिजन में थे या उन्होंने कोई सामान्य पूजा पाठ कर लिया।
नहीं।
अच्छा।
ये सब उनकी घोर तपश्चर्या का नतीजा था। अपने तप के बल पर उन्होंने खुद को उस बड़े लक्ष्य के काबिल साबित किया, उसे सिद्ध किया। पूज्य गुरुदेव तो साफ कहते हैं, बिना तप के न तो कोई मंत्र सिद्ध हो सकता, न ही ईश्वर की कोई खास कृपा मिलती है।
अच्छा।
श्रृंगी ऋषि का ही उदाहरण लें, उनका मन, उनकी इंद्रियां पूरी तरह उनके वश में थीं। ये तप का ही बल था कि उनकी वाणी में वो शक्ति आई जिससे राजा दशरथ के लिए वो कठिन पुत्रेष्ठी यज्ञ सफल हुआ। तो मतलब तपस्वी का जो आत्मसंयमी जीवन है वही असली शक्ति का स्रोत है।
अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तपस्या सिर्फ पुराने जमाने के ऋषियों या उन पौराणिक पात्रों के लिए ही नहीं थी।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
आज की जो ये भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसमें एक आम इंसान के लिए तपस्या का क्या मतलब हो सकता है? ये कैसे कैसे प्रासंगिक है आज?
पूज्य गुरुदेव तो इसे आज के लिए भी उतना ही जरूरी मानते हैं, बल्कि शायद और भी ज्यादा जरूरी। उन्होंने तपस्वी का एक और अर्थ बताया है, लड़ाकू या संघर्षशील।
लड़ाकू, ये शब्द तो तपस्वी के साथ थोड़ा चौंकाने वाला लगता है। आमतौर पर तो हम शांत छवि सोचते हैं।
हाँ, लगता है, लेकिन इसका अभिप्राय समझिए। जीवन जो है ना, वो एक संघर्ष है, एक लड़ाई है। हमें सिर्फ बाहर की मुश्किलों से ही नहीं लड़ना पड़ता।
जी।
जैसे मान लीजिए सामाजिक अन्याय है, बुराइयां हैं, या छोटी मोटी रोजमर्रा की परेशानियां हैं।
जी।
बल्कि हमें अपने अंदर के दुश्मनों से भी लगातार लड़ना पड़ता है। आलस्य है, प्रमाद यानी लापरवाही है, निराशा है, डर है, चिंता है।
हाँ, ये तो है। अंदर की लड़ाई ज्यादा कठिन होती है कई बार।
बिल्कुल। तो तपश्चर्या हमें इसी दोहरे मोर्चे पर अंदर और बाहर लड़ने के लिए तैयार करती है। ये सिर्फ कष्ट सहना भर नहीं है।
तो फिर क्या है?
ये उन्नति के लिए, अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए, अपनी क्षमता, अपना सामर्थ्य बढ़ाने के लिए जो हम संकल्प लेकर कठिन मेहनत करते हैं ना, वो पुरुषार्थ ही तप है। ये अपनी कमजोरियों से लड़ने का साहस है।
यानी कि एक तरह से अपने आप को बेहतर बनाने की जो कोशिश है, जो सतत प्रयास है, और समाज में जो बुराइयां हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना या संघर्ष करना, ये दोनों ही तप के दायरे में आ जाते हैं।
हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, दोनों ही तप है। और पूज्य गुरुदेव तप और योग को एक अविभाज्य जोड़ी बताते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू।
अच्छा, तप और योग कैसे?
देखिए, तप यानी तपाना, शुद्ध करना, अपने अंदर के दोष, दुर्गुण, बुरी आदतें, इनको अपने संकल्प की आग में जलाकर खत्म करना। और योग यानी जोड़ना, खुद को ऊंचे आदर्शों से, अच्छे गुणों से, सिद्धांतों से, या कह लीजिए परमात्मा से जोड़ना, एकाकार करना।
जैसे बल्ब को पावर हाउस से जोड़ते हैं।
बिल्कुल। क्या बढ़िया उदाहरण दिया आपने। जैसे बल्ब को पावर हाउस से जोड़ने पर ही वो रोशनी देता है, वैसे ही आध्यात्मिक उन्नति हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में असली तरक्की करनी हो तो ये दोनों कदम जरूरी हैं, तप और योग।
मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से पूजा पाठ कर लेना या कुछ कर्म कांड कर लेना वो काफी नहीं है।
वो तब तक अधूरे हैं जब तक जीवन में अनुशासन न हो, पवित्रता न हो, संयम का तप न हो। अब देखिए, पुराने जमाने में जो गुरुकुल होते थे या आरण्यक होते थे
जी,
वहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता था, वहाँ इसी कठोर मेहनती और अनुशासित जीवन का अभ्यास कराया जाता था, वही असली तप था।
तो इन सब बातों को अगर हम समेटें, इसका निचोड़ निकालें, तो गुरुदेव के अनुसार तपस्वी जीवन का असली मर्म, उसका सार क्या है?
सार यही है, निचोड़ यही है कि महानता, चाहे वो अंदर की हो आध्यात्मिक या बाहर की संसारिक, उसका जो राजमार्ग है, जो मेन रोड है, वो तपस्वी जीवन से होकर ही जाता है। इसमें क्या क्या शामिल है? आत्मसंयम है, अपने सिद्धांतों के लिए कष्ट सहने की तैयारी है, जीवन में जो चुनौतियां आती हैं उनसे लगातार जूझने का संकल्प है, और खुद को छोटे मोटे स्वार्थों से ऊपर उठाकर ऊंचे आदर्शों से जोड़ने की कोशिश है।
अच्छा,
ये उस जीवन के बिल्कुल विपरीत है जो विलासिता में, आलस्य में और सिर्फ अपने लिए जीने में बीत जाता है। तब ही है जो इंसान को अंदर से और बाहर से शक्तिशाली बनाता है।
तो मतलब संक्षेप में कहें तो कूज गुरुदेव के लिए तपस्वी जीवन का अर्थ हुआ सिद्धांतों के लिए जीना, मुश्किलों को एक अवसर की तरह देखना और लगातार खुद को निखारने और संघर्ष करने के जरिए अपने आप को गढ़ते रहना।
बिल्कुल सही, एकदम यही। और ये पूरी चर्चा जो है ना, ये हमें एक गहरे आत्मनिरीक्षण के लिए छोड़ जाती है।
किस तरह के आत्मनिरीक्षण के लिए?
यही कि हम खुद से पूछें, हमारे अपने जीवन में वो कौन सी कठिनाइयां हैं, वो कौन सी बुराइयां या कमजोरियां हैं जिनसे लड़ने के लिए हमें खुद एक तपस्वी बनने की जरूरत है। मतलब और ज्यादा अनुशासित होने की, और ज्यादा संकल्पवान होने की, और ज्यादा संघर्षशील होने की जरूरत है। शायद इसी सवाल का जो ईमानदार जवाब होगा वही हमें सच्ची उन्नति के रास्ते पर आगे ले जा सकता है।
वाकई ये एक बहुत गहरा विचार है सोचने के लिए। बहुत खूब, इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।
ओम शांति।